लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय राजू भाई जी का एक हाथ की ताली से हम दिल से स्वागत करते हैं। राजू भाई जी से जब भी मधुबन में आते हैं आपके क्लासेस सभी सुनते हैं। आप यज्ञ के वरिष्ठ भ्राता हैं और यज्ञ कारोबार में दादियों के राइट हैंड हैं। बहुत ही स्वभाव से नम्रचित, सरल चित, सभी के स्नेही और सहयोगी हैं। आप 1960 में ज्ञान में आए, आपका परिवार ज्ञान में चला, तब आपकी आयु बहुत छोटी थी। 1972 से आप मधुबन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 76 से आपको मुरली विभाग मिला और उसमें आपने सिंधी मुरली टाइप करना शुरू किया पहले, और अभी तो बाप दादा मुरली चलाते हैं, आप साथ साथ मुरली टाइप करते हैं और पूरे विश्व में उसी समय मुरली पहुंच जाती है। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन में जो फोटो स्टेट विभाग है वो भी आप संभालते हैं। ग्राम विकास प्रभाग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं और उसके अंतर्गत बहुत सेवाएं, खासकर ग्राम विकास के बहुत अभियान होते रहते हैं और उसमें शाश्वत यौगिक खेती के लिए जो कार्य किया है रूरल विंग ने वो बहुत ही प्रसिद्ध है और उसको मान्यता भी मिल रही है सरकार के द्वारा। इसके अलावा जो भी पत्र पुष्प निकलता है हर महीने सेवा केंद्र पर पत्र पुष्प जाता है दादी जानकी जी की तरफ से, उसका प्रकाशन भी आपकी तरफ से ही होता है। बाप दादा के महावाक्यों का संग्रह करके आपने कई पुस्तकें बनाई हैं, ऐसे ही क्लासेस की पुस्तकें ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ये भी वो संग्रह आपने ही किया है। और वैश्विक स्तर पर जो भी कार्यक्रम होते हैं जिन्हें हम नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं उसमें भी आप भाग लेते हैं। विदेशों में भी अनेक देशों में आपका जाना हुआ है और बाबा का ये ईश्वरीय संदेश आपने अनेकों आत्माओं तक पहुंचाया है। तो अभी हम सुनेंगे आपके द्वारा त्याग, तपस्या और सेवा, इस विषय पर प्रेरणाएं।
ओम शांति। बाबा की इस तपस्या भूमि में आप सभी आते ही तपस्या का अनुभव कर रहे होंगे। वातावरण यहाँ का ऐसा है जहाँ स्वयं आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, हमारी दादियों ने तपस्या की। इस तपस्या स्थली पर आते ही योग लग जाता है, मेहनत नहीं लगती। वायुमंडल में ही वो चारों तरफ प्रकंपन फैले हुए हैं और ड्रामानुसार मौसम भी आप सबको ऐसा मिला है जो फरिश्तों की दुनिया की सैर कर सकते हो। फरिश्तों की दुनिया कैसी होगी? ऐसी होगी ना, चारों तरफ भाग है, बादल हैं और उसके बीच में योग की भट्टी तपस्या कर रहे हो। और आज बाबा ने बड़ा सुंदर वरदान दिया खुश नसीब आत्माएं हो, खुश नसीब होना। और खुश नसीबी का आधार है याद और सेवा का बैलेंस, ये झूला है, खुशी का झूला। अगर एक रस्सी नीचे ऊपर हो गई तो झूला हिलेगा और आप गिरेंगे, इसलिए ध्यान देना। तो बाबा हम सबको याद और सेवा के बैलेंस की बात तो कहते ही हैं, लेकिन उसका जो आधार है, तीन शब्दों में जो अभी बताया, त्याग, तपस्या, सेवा। तो तपस्या और सेवा का आधार है त्याग। जब तक वृत्तियों में त्याग नहीं है तब तक तपस्या भी नहीं हो सकती और सेवा भी नहीं हो सकती। लेकिन त्याग के नाम पर लोग तो अपने घर बार का ही त्याग छोड़ के चले जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे प्रवृत्ति का, घर गृहस्थ का, व्यवहार का त्याग, ये त्याग नहीं है। लेकिन त्याग शब्द हम सबको बड़ी गहराई में ले जाता है, क्योंकि लोग भिन्न भिन्न रीति से कहीं न कहीं संबंधों में, पदार्थों में, साधनों सुविधाओं में फंसे हुए हैं। बाबा हम सबको त्याग जो सिखाते हैं वो है अंदर से मैं और मेरेपन का त्याग, देह अभिमान का त्याग। साधन और सुविधाएं तो हम सबके प्रयोग के लिए हैं ही, और उन सबको छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसमें लगाव न हो, उसमें बुद्धि अटकी हुई न हो, फंसी हुई न हो, उसको वास्तव में त्याग वृत्ति कहा जाता है। वृत्ति में त्याग आ गया। लेकिन इन सब त्याग का आधार है वैराग्य। जब तक अंदर से कोई चीज में बुद्धि फंसी हुई है, वैराग्य नहीं आता, तब तक उसको छोड़ना, त्याग करना संभव नहीं होता। इसलिए बाबा ने हम सबको त्याग की बड़ी गहरी परिभाषा सुनाई, और साथ साथ ये भी एक बहुत सुंदर श्रीमद् दी कि बच्चे तुम्हारे जीवन से सिर्फ त्याग नहीं दिखाई दे, लेकिन तुम्हारा भाग्य कितना ऊंचा है, त्याग के साथ अपना भाग्य दिखाओ। हम भाग्य विधाता बाबा के बच्चे हैं, और उस भाग्य विधाता बाबा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार वर्षा लेने के लिए कुछ एक चीजों का त्याग जरूरी है और करना पड़ता है। जैसे आज हम लोगों ने बाहर का खाना पीना, घूमना, शौक, मौज, फैशन, रंग बिरंगी ड्रेसेस, उसका त्याग किया। स्थूल में अगर देखा जाए तो त्याग नहीं है, वो हमारा भाग्य है। अगर कलर ड्रेस पहन करके कोई चलता है तो दो चार दिन पहनता है, उसमें पता नहीं चलता कहीं दाग है, कहीं बदबू है, कहीं मैला है, पहन के रह रहा है। बाबा ने हम सबको सफेद ड्रेस पहनाई, और अगर जरा भी कुछ इसमें छोटा सा भी कहीं मिट्टी दाग लग जाए तो उसको धुलाई करना ही पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। उससे चमड़ी के रोग नहीं होते, कई चीजें स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है कि रोज बदलते हैं कपड़े, धो करके पहनते हैं। बाहर भोजन नहीं खा रहे हैं हम, इधर उधर दुकानों में, ठेलों में भोजन आता है, ट्रेन में लोग भोजन खाते रहते हैं। इससे भी देखो कितनी बीमारियां, कितनी मानसिक शारीरिक रोग अन्न से ही हो रहे हैं। बाबा ने हम सबको अनासक्त बना दिया, बच्चे कहीं भी जाते हो देखते हो आपकी जबान में पानी नहीं आएगा, नहीं इच्छा होगी खाएं। तो ये सब क्या त्याग किया, ये त्याग है क्या? लोग कहते बहुत बड़ा त्याग कर दिया, ब्रह्मा कुमारी में गए, ये नहीं खाना, ये नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उनको ये त्याग दिखाई देता है। और बाबा कहता बच्चे ये तो तेरा भाग्य है, त्याग नहीं है। अगर तुम बहुत अच्छे परहेज से चलते हो तो परहेज से चलने के कारण आप बहुत चीजों में सुरक्षित हो, बचे हुए हो। क्योंकि आजकल अगर व्यक्ति कोई को अपने चक्कर में फंसाना भी चाहता है, तंत्र मंत्र जंत्र जो भी करते हैं व्यक्ति, कैसे करते हैं, कुछ न कुछ खिला करके करते हैं, और हम खाते ही नहीं किसी के हाथ का, तो हमारे पर क्या करेंगे, कर सकेंगे? तो इसलिए उसमें भी हमारी सुरक्षा है। हम बाहर का ऐसा खाते पीते नहीं हैं, ऐसी जगह पर जाते नहीं हैं, कोई वृत्तियों में आसक्तियां नहीं हैं। और संग जो खराब था, बुरा संग था, जो व्यर्थ बोलने वाले, व्यर्थ करने वाले, उल्टा सीधा कर्म करने वाले, उनके संग से बाबा ने बचा लिया, उसका हम लोगों ने त्याग कर दिया। तो जो स्थूल में भी अगर हमने कुछ छोड़ा है तो बाबा कहता है ये छोड़ा नहीं है, ये तुम्हारा भाग्य है। बुरे संग का त्याग किया, अशुद्ध अन्न का त्याग किया, फैशन का त्याग किया, जो सवेरे सवेरे हम लोग सोए रहते थे 8 बजे 10 बजे तक, कितनी बीमारियां उसे घेर लेती आलस्य के कारण। अब सवेरे 4 बजे उठते हैं, लोग कहते हैं तो बहुत बड़ा त्याग है, तो देखो नींद के समय उठ जाते हैं सब, ये त्याग है माता है, त्याग है। अरे अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, बहुत अच्छा सुबह सुबह का वातावरण है, ऑक्सीजन होती है, सैर करना, एक्सरसाइज करना, भगवान को याद करना, भक्ति के अंदर इसका कितना महत्व रखा गया है। ज्ञान मार्ग में अगर हम बच्चे इसको पालन करते हैं, लोगों को लगता है भाई ये तो नींद छोड़ करके ये सवेरे सवेरे कहाँ जाते हैं, उनको त्याग दिखाई देता, और हम कहते हैं ये हमारा भाग्य, ये कोई बड़ा त्याग नहीं है। और अगर कोई दृढ़ता से संकल्प कर लेता है ना, तो ये ऐसे सहज छूट जाता है, इसको छोड़ने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमें ब्राह्मण जीवन में एक ऊंचा लक्ष्य मिलता है कि ब्राह्मणों को फरिश्ता बनना है, उस फरिश्ता बनने के लिए जो त्याग है वो बड़ा सूक्ष्म त्याग है। ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने उस त्याग को बहुत महत्व दिया, और आज इस यज्ञ का जो फाउंडेशन है, जो इतना मजबूत है, उसका आधार वही त्याग वृत्ति है। उसमें उन्होंने त्याग किया, कोई महिमा करे न करे, मान का त्याग, शान का त्याग, इच्छाओं का त्याग, कोई से कोई डिमांड नहीं, कोई मांगना नहीं, सम्मान दे या न दे, इज्जत दे न दे, त्याग का अर्थ है नम्रता आ गई। त्याग नहीं किया लेकिन हम नम्र चित्त बन गए। बाबा हम सबको ये त्याग सिखाता है कि बच्चे जिस दिन तुमने अपनी जो बुद्धि का अहम है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत अच्छे कुल का हूँ, मैं बहुत अच्छे पद पोजीशन वाला हूँ, मेरे अंदर बहुत योग्यताएं हैं, ये जब अहंकार, जो सूक्ष्म अहंकार है जिसको चलने फिरने में दिखाई देता है, ये रोबदार बहुत रोब है, अपने जाति का बड़ा नशा है, अपने पद का बड़ा नशा है, अपने पैसे का बड़ा नशा है। आज देखो थोड़ा सा एक छोटा सा पद किसी को मिल जाता है, ठाट उसके होते हैं, कैसे चलता है, कैसे बात करता है। मैं एक बार हरियाणा में आया, बॉर्डर पर एक सम्मेलन रखा था, प्रैक्टिकल सुना, तो मेरे साथ वहां का एक प्रधान बैठा था और उतना नशे में बैठा था, मेरी तरफ एक बार भी देखा नहीं। हमने कहा बड़े बड़े मिनिस्टर्स आकर के पहले हम नमस्कार करेंगे, चलो हम कर लेंगे तो कम से कम रिस्पॉन्स देंगे, पूछेंगे आप कहां से आए हो, कैसे आए हो, ठीक है कौन से, मतलब कुछ बात करेंगे, प्यार से देखेंगे, मुस्कुराएंगे। वो एक प्रधान था और वो इतना नशे में ऐसा बैठा था जैसे बड़ी बहुत बड़ी पोस्ट हो, उसको जरा भी झुकना नहीं, बड़ा दिखाई देता था, बोलने में भी देखने में भी ऐसा रोबदार। जैसे आजकल थोड़ा सा पद मिल जाता है लोगों को, और बाबा के घर में इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट सबको मिली हुई है, मुख्य प्रशासिका दादी जी, अभी तो जानकी दादी जी हैं, प्रकाशमयी दादी को देखा, इतनी नम्र चित, इतनी त्याग वृत्ति, जरा भी अपनापन नहीं, जरा भी। आप लोगों ने देखा होगा दादी को, देखा है सभी ने, किसने किसने देखा, हाथ उठाओ, लगभग सबने देखा है, थोड़े चोर बाद में आए हैं। मैं एक बात सुनाता हूं दादी की, जो क्योंकि दादी जी के साथ मैं, दादी जी का दिन आ रहा ना परसों, 35 साल रहा हूं और बहुत समीपता से रहा हूं। कोई भी कार्य होता था दादी रेगुलर मेरे को बुलाती थी, कमरे में ही बुलाती थी, बात करती थी, क्योंकि पत्र व्यवहार का ऐसा काम था मेरा, तो पोस्ट आती थी तो दादी समझती थी ये पोस्ट इतनी आई है इसका जवाब देना है, तो मुझे रोज 4 बजे शाम को अपने कमरे में बुला लेते थे, बाजू में साथ में बिठाते थे। उनके साथ जो बहनें थी उनको कहते तुम सो जाओ, अभी रेस्ट करो, मेरे को इनसे काम करना है। पत्र सुनती थी, बैठती थी, लिखाती थी। इतनी नम्र चेत, इतनी निर्माण चेत, आपको लगेगी नहीं दादी है इतनी बड़ी, इतनी हस्ती कितनी महान है। जब हम शुरू शुरू में आए छोटे थे, थोड़ा बड़ों से डर लगता था, 15-16 साल की उम्र थी और स्कूल की लाइफ से आए थे, मुझे ड्यूटी मिल गई बाबा के साथ बैठ के लिखने की। मुरली डिपार्टमेंट तो 76 में मिली, लेकिन उनको पता चला दादियों को कि हिंदी जानता है और अच्छी राइटिंग है, तो मुझे बाबा के साथ बैठ के लिखने का सौभाग्य मिला। यशू दादी लिखती थी, अकेली थी, लेकिन 12 घंटा बाबा रहता था, रात भर रहता था, तो यशू दादी भी कभी कभी कहती थी मेरे कोई साथ चाहिए, तो मैं भी बैठता था, मैं कहता दादी आप भले जाओ रेस्ट करो, मैं लिखूंगा अभी जितना बाबा बोलेगा, रात भर मैं लिखता था। और सवेरे जब दूसरे दिन दादी कहती थी, दीदी दादी दोनों ही होती थी उस समय, तो ये छोटा हाल था, ये नहीं था, हिस्ट्री हाल था, कहती थी तुमने जो रात भर लिखा है ना अभी रात्रि क्लास में सुना हुआ करके क्या बाबा ने बोला। और ये सोफा कुर्सी तो कुछ थे नहीं, एक भी कुर्सी नहीं थी उस हाल में, गद्दी थी, गद्दी पर बिठा दिया मेरे को और खुद आके ऐसे बैठ गई। अब बताओ इतनी बड़ी हेड, जो इतना सबको पढ़ाने वाली, इतनी सबकी प्यारी दादी, और हमारे सामने अगर स्टूडेंट बन के बैठे और मैं एक कल का आया हुआ लड़का और दादी को क्लास में सुनाओ तो मेरा क्या हाल होता होगा, डर लगता, बहुत डरता था मैं। नहीं नहीं सुनाओ, कुछ नहीं होता है, बाबा के महावाक्य सुना रहे हो ना, तुमको ये नहीं होना चाहिए, बाबा के महावाक्य सुना रहे हो, दादी बैठी ऐसे नहीं, ये सारे क्लास वालों को ये बाबा की मुरली सुना रहे। तो जो रात भर मैं लिखता था कम से कम 1-1.5 घंटा तो मैं रोज रात को दूसरे दिन सुनाता था, मुझे ही गद्दी मिलती थी वहां पर। तो मैं ये बता रहा हूं कि इन आत्माओं में जरा भी नहीं कि मैं संस्था की हेड हूं, मैं बड़ी हूं और ये कल का आया हुआ मुझे क्या सुनाएगा। आजकल कितना अहंकार होता है, गुरु अपनी गद्दी पे किसी को बैठने देते हैं। एक बार यहां पर जैन मुनि आए, बड़े तेरापंथी, बहुत बड़े संत थे, और उनके ठाट बाट तो अपने होते हैं, उस समय उन शांति भवन बन गया था, उनको उनके चेले लोग लेकर के आए, उनके साथ बहुत सारे चेले थे, और वो जब घुसे अंदर तो दादी जी इतना निर्माणता से अपनी गद्दी छोड़ दिया और खड़ी हो गई, हाथ जोड़ा, महात्मा जी आइए आइए ऐसे करके लेके नीचे से, और जो दादी की गद्दी थी दादी ने कहा यहां बैठी है, नहीं नहीं ये आपकी गद्दी है मैं यहां नहीं बैठा। दादी ने कहा नहीं ये मेरी गद्दी नहीं है, ये बाबा की गद्दी, बाबा के बच्चों के लिए है, आप बैठिए। अब वो भी किसी के आसन पर नहीं बैठते हैं, वो जो बिछा हुआ था ना आसन वो सारा हटा दिया, अपना बिछाया उस पर बैठे, और दादी अपना नीचे बाजू में बैठ गए। उनको इतना इस बात का प्रभाव पड़ा कि एक संस्था की हेड इतनी निर्माणचित, इनको जरा भी अहंकार नहीं है, उसी बात की उनको छाप पड़ी। तो ये जो अहम का त्याग है, ये जो मैंपन का त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है, और अगर ये सूक्ष्म कोई त्याग कर लेता है तो नम्र चित, सरल चित इतना निर्माण हो जाता है जो उसको योग लगाने में मेहनत नहीं लगती। आज जो हम कहते हैं ना हमारा योग नहीं लगता, उसका कारण है कहीं ना कहीं अपने बुद्धि अपने आप में अटकी हुई है, मैं में अटकी हुई है, या मेरे में अटकी हुई है, मेरे साधन, मेरी चीजें, मैं इतना बड़ा हूं, इतनी बड़ी दुकान है, इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी पोस्ट है, सारा दिन वही खुराफात वाले संकल्प अंदर अंदर, चले योग क्या लगेगा, विचार करना कि अगर बुद्धि जरा भी शांत नहीं है तो तपस्या की जा सकती है क्या? तो अगर हम सभी तपस्वी मूरत बनना चाहते हैं तो हम बहुत सूक्ष्म चेक करें, कोई नाम की, मान की, शान की, मैपन की, किसी देहधारी में लगाव की, झुकाव की, किसी भी प्रकार की आकर्षण है, कई चाहनाएं हैं बुद्धि को, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जब तक इनका सूक्ष्म त्याग नहीं किया तब तक तपस्या संभव नहीं है। तपस्वी जीवन बाबा चाहता है बच्चों की कि ये जीवन तपस्वी बन जाए, एक दो घंटे वाले नहीं, हम एक टांग पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते बाबा एक दिल में बसा हुआ है। सच्ची तपस्या है एक बाबा, दूसरा न कोई, बुद्धि में बाबा के सिवा और कोई नहीं है। तो अगर हम सच्ची तपस्वी मूर्त आत्मा बनना चाहते हैं तो हम फाउंडेशन को जरूर चेक करें, त्याग, वृत्तियों से त्याग है। अगर सचमुच ये वृत्तियां अनासक्त हो गई, उपराम हो गई, न्यारी हो गई, सबके बीच में रहते हुए अंदर से आत्मा बिल्कुल तृप्त है, संतुष्ट है, कोई भी मन के अंदर उत्पत्ति ये नहीं है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, या कोई भी व्यक्ति और वस्तु अपनी ओर खींच नहीं रहा है, कहीं लगाव नहीं है, कहीं झुकाव नहीं है, किसी के प्रभाव में हम नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है, तब तपस्वी मूर्त बन सकते हैं। तो ध्यान देना, तपस्या कठिन नहीं है, बहुत सहज योग बाबा ने हमें सिखाया है, लेकिन उस सहज योग का जो आधार है वो मजबूत चाहिए। और जिन्होंने उस आधार पर ध्यान दिया, अब क्या हमको बाबा कहता, बच्चे मान लो आज साधन आए हैं साइंस के, आपने घरों में टीवी लगाई है, अब टीवी के अंदर एक न्यूज 10 मिनट 15 मिनट देखना, वो चलो जानकारी होनी चाहिए भाई क्या देश में हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसके लिए क्या करना चाहिए, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए हम समाचार देखते हैं, सुनते हैं, उसी अनुसार हम अपने आप को सेट करते हैं। लेकिन उसमें सीरियल्स आ रही हैं, कई अश्लील गाने आ रहे हैं, नाटक आ रहे हैं, और लोगों का इतना इंटरेस्ट उसके पीछे आ गया, बहने कहेंगी भाई इसको नहीं देखो तो अच्छा है, ये मन को खराब करता है, मन को व्यर्थ की तरफ ले जाता है, चलो टीवी नहीं देखेंगे, आज मोबाइल आ गया, मोबाइल के अंदर देख रहे हैं, इंटरनेट पर देख रहे हैं, इधर उधर की सब दुनिया की विकारी बातें, अश्लील बातें। और अगर किसी को ये इंटरेस्ट जाग गया, इसका उसने त्याग नहीं किया, आप उसको कहो तुम आकर के योग करो, कर सकता है बताओ? लगेगा योग उसका? अमृत वेले अगर उठ भी गए, मान लो बाबा कहता है बच्चे श्रीमत है उठो, आप उठ भी जाएं जबरदस्ती, फिर भी थोड़ी देर बाद शांत स्वरूप होते होते शांति धाम चले जाएंगे। इसलिए ध्यान देना, ये त्याग नहीं है कोई, लेकिन जरूर जो हमारा आधार है उस आधार को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसलिए कोई भी ऐसी चीजें जो मन को विचलित करने वाली है, मन को व्यर्थ की तरफ ले जाने वाली है, चाहे खाने पीने की है, चाहे देखने सुनने की है, चाहे बोलने की है, बहुत सारी चीजें, उनका त्याग, उनको जब हम दिल से छोड़ देंगे तब तपस्वी बन जाएंगे, सहज योगी जीवन बन जाएगी। और तपस्या के कुछ आधार हैं, मैं आपको दो तीन आधार बताऊं, क्योंकि तपस्वी आत्माएं बिना आसन के तपस्या नहीं करती, आसनी चाहिए उनको, बैठक के लिए स्थान चाहिए। और आपने देखा होगा जितने तपस्वी हैं उन सबको एक कमल आसन देते हैं, कमल आसन, उनकी जो मूर्तियां बनाते हैं उनको कमल आसन पर बिठाते हैं, फूल के ऊपर बिठाते हैं। अब फूल के ऊपर उंगली रखोगे तो मुंझ जाएगा, मुरझा जाएगा, सहन कर सकता है? अब कोई कमल पर फूल के ऊपर बैठा जा सकता है? क्यों, ये दिखाया है, यादगार है। ये कमल आसन एक प्रतीक चिन्ह है कि कीचड़ पानी परिवार उसका बहुत बड़ा है, नीचे कुछ छोड़ा नहीं है, सब साथ है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं है, वो निहारा है, ऊपर है, कुछ भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं आता। कितना बड़ा परिवार है, कमल ककड़ी है, कमल गट्टा है, कितनी सारी चीजें नीचे संसार बना हुआ है, लेकिन वो कमल की तरह ऊपर खिला हुआ है। परमात्मा कहते हैं बच्चे इस संसार में रहो, संबंध निभाओ, व्यवहार करो, सब कुछ निभाओ, लेकिन जब आप इतना न्यारे होकर के रहेंगे, कोई भी प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर इस संसार की किसी वस्तु का, व्यक्ति का, किसी के संस्कारों का, स्वभाव का नहीं आएगा, तो ये कमल आसन आपको तपस्या में बहुत मदद करेगा। बाबा की याद सहज बन जाएगी। इसलिए एक तो कमल आसन हम सबके तपस्या का स्थान है, और दूसरा इस संसार में व्यवहारिक जीवन में आते हुए हरेक के साथ संबंध निभाते हुए आवश्यकता है साक्षी दृष्टा स्थिति की। अभी अगर आप किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो फंस जाएंगे। नाटक चला है ना, दुनिया में भी जब नाटक होते हैं तो नाटक को देखने वाले अगर उसमें बहुत घुल मिल जाते हैं तो बेचारों को उसके नाटक के एक्टर्स का प्रभाव पड़ जाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट बताता हूँ, एक दिन की बात रमणीक सुनाता हूँ, यहाँ की है, इसी हाल की। उस समय रामायण चल रही थी पूरे भारत के अंदर, बहुत उसका नामाचार था, ये रामानंद वाली रामायण जो चल रही थी ना। और जब वो चलती थी सीरियल, तो मैं समझता हूँ शायद सब दुकानें भी बंद कर लेते थे, लोग उसको देखने लगते थे घरों में भी, सब जगह पर। तो मधुबन वालों को भी इधर उधर से समाचार मिला कि भाई रामायण बताने क्या है, रामायण देखनी चाहिए। और हम लोगों के पास तो टीवी उस समय किसी के पास थी नहीं, तो हमने सबने दादी जी को एप्लीकेशन डाली, दादी हम लोगों को भी रामायण दिखाओ, हम देखेंगे क्या है। तो दादी तो बहुत बड़ी दिल से कहती थी अच्छा अच्छा ठीक है। एक दिन भाइयों को बुलाया कि चलो आज रामायण का एक सीरियल इनको दिखाओ। इसी हाल में तो यहां पर वो रामायण का एक सीरियल यहां लगाया गया, वो टीवी चालू की गई, और हम सब जितने थे भाग भाग, क्लास में नहीं आते लेकिन उसमें सब आ गए, सब आए। तो सीरियल चल रहा था, वो उस दिन का सीरियल था सीता हरण वाला। और सीता हरण जब हुआ तो जो राम का विलाप था वो बड़ा दर्दनाक था, वो जो रोता था ना, था तो नाटक जानते हम सब थे, लेकिन वो नाटक देख करके जो इस सभा में बैठे थे जिन्होंने पहली बार शायद देखा होगा, उनको भी हाय ऐसा राम के साथ ऐसा, और वो उनके आंसू आ गए। और दादी बड़े साक्षी होकर के ऐसे देख रही थी, दादी भी बैठी थी साथ में हम लोगों के। दादी कहती अभी दूसरी बार तुम लोग नाम नहीं लेना रामायण देखने का, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, कोई नहीं देखेगा। एक नाटक करने वाला भी स्टेज से उतर के जाएगा, आपस में खाएंगे पिएंगे हंसेंगे बहलेंगे, उस सीरियल में स्टेज पर पार्ट बजा रहा और रो रहा है, और उसके रोने को देख करके पार्ट नहीं समझ रहे हो, ये रियल समझ रहे हो आप लोग। आज की दुनिया में हम सभी इस संसार में हर एक्टर के पार्ट को देखने की बजाय समझते सब रियल हो रहा है, और इसलिए दुखी हो रहे हैं। आपके सब नाटक बेहद को देखो, बेहद नाटक बाबा देखता है ऊपर से, मुस्कुराता इसलिए है, जो निश्चिंत है ना बाबा ऊपर देख करके हम बच्चों के खेल को, उसका कारण है वो जानता है ये नाटक चल रहा है। और नाटक का अर्थ है ना अटक, अटकना नहीं, कहीं अटक गए तो गए। कोई दुख देगा, कोई सुख देगा, कोई आएगा पार्ट बजाएगा, बहुत प्रिय होगा, और बीच में ही माँ बाप बैठे हैं, परिवार बैठा है, वो शरीर छोड़ के चला गया। अब जिंदगी भर उसके पीछे रोना धोना, उसके बिना शांति नहीं, चैन नहीं, क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। अगर आज आप देखो कि पार्टधारी कैसे अचानक आते और चले जाते अपना अपना खेल खेल करके, अगर आप साक्षी दृष्टा स्थिति को नहीं अपनाएंगे। मैं बड़े बड़े योगियों को अपने इस विद्यालय के कई भाई बहनों को देखता हूं प्रैक्टिकल, जब ऐसा कोई पेपर आता है सारा ज्ञान ध्यान पूरा हो जाता है, बाबा ने मदद ही नहीं की, बाबा ने बताया भी नहीं, ऐसा मेरे साथ हो गया, मैंने तो बाबा के लिए सब कुछ किया, तन दिया मन दिया धन दिया सब समर्पित किया। ब्रह्मा बाबा भी कहते जब मैं लौकिक में था तो भगवान को गाली देता था कभी कभी कि तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। और ज्ञानी आत्माएं इतना ज्ञान होने के बाद भी, अब बिजनेस में घाटा पड़ गया, कुछ हो गया, अचानक कोई ने शरीर छोड़ दिया, बाबा मुझे मदद नहीं किया, बाबा मुझे गाइड नहीं करता, बाबा मुझे बताया ही नहीं, ऐसा मेरे साथ पेपर आ गया। और बाबा ऊपर से मुस्कुराता है कि बच्चों को ज्ञान नहीं है, ये साक्षी दृष्टा स्थिति नहीं है। ये थोड़े समय के लिए आप सबको, हम सबको पहाड़धारी मिले हैं, कोई पति बन गया, कोई पत्नी बन गई, कोई बेटा बन गया, कोई बेटी बन गई, जैसे वहां कोई राम बन गया, कोई सीता बनी, कोई रावण बना, कोई हनुमान बना, कोई अंगद बना, और उन्होंने स्टेज पर खेल खेला, पार्ट बजाया और फिर उतरे, स्टेज का ड्रेस उतारा और अपने मौज में रह रहे हैं। देखने वाले के ऊपर इतना प्रभाव पड़ जाता है, जो रोने लगता है और दुखी होने लगता, हाय हाय कहने लगता, और जो जानता है तो सब एक्टर्स ने पार्ट बजाया है, तो मौज कर रहे हैं और हम क्यों दुखी हूं। बाबा उस दृष्टि से देखता है। बाबा के आगे अगर कभी कोई सुनाया, एक जगह कुछ अचानक एक सेंटर पर आग लग गई तो सारे विद्यार्थियों के संकल्प चलने लगे कि बाबा ने अपने मकान की, अपने सेंटर की भी रक्षा नहीं की, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बहुत अच्छा म्यूजियम था, बहुत अच्छा सेंटर था, कोई ने नीचे आग लगाई, चौथी मंजिल पर था, सारा जल गया, पूरा नुकसान हो गया, हलचल हो गई, ब्रह्मा कुमारियों का भी सेंटर जल गया। अच्छा बाबा यहां आए थे और बाबा को दादी ने इसे हंसी में मतलब जैसे बहुत प्यार से सुना, दादी बाबा हमारा एक सेंटर था, ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे आग लगा दी नीचे और वो सेंटर जल गया। बाबा बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहता है बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब देखो साक्षी दृष्टा क्या स्थिति होती है। अब बहुत अच्छा हुआ तो सब ऐसे बाबा को देखने लगे, बाबा ये क्या बोला अच्छा हुआ, माताएं अच्छा हुआ है बोलो, कहो क्या अच्छा हुआ, आग लग गई अच्छा हुआ, क्या बोल रहे हैं आप लोग, अच्छा क्या हुआ मैं बताता हूं। क्या था, वो सेंटर जो था वहां एक दादी रहती थी, उसकी एज बहुत बड़ी हो गई थी, उस मकान में लिफ्ट नहीं थी, चौथी मंजिल पर मकान था, बहुत नीचे ढूंढ रहे थे कोई मकान मिल जाए, कोई देने के लिए तैयार नहीं था, म्यूजियम तो बना दिया ऊपर, कोई देखने नहीं आता था, मकान नीचे नहीं मिलता था, दादी की एज बड़ी हो गई थी, लिफ्ट नहीं थी, आग लगी, तुरंत सरकार ने पहले नंबर में नीचे मकान दिया। एक बात सुनो, कई बातें कैसे फायदा होता, पूरे सेंटर का इंश्योरेंस था, पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, भाई बहनों को इतना प्यार आया, इतना रहम आया, दादी के पास इतनी बड़ी फ्रिज थी, ये था, ये जल गया, ये जल गया, वो एक के बजाय सब मिल करके ले आए, सेंटर पर रहने की रखने की जगह नहीं, इतना सामान आ गया, कल्याण ही कल्याण है। अगर साक्षी दृष्टा स्थिति अगर कोई की है, हलचल होती है, लेकिन थोड़े समय में अगर वो हिल गया, अधैर्य हो गया, अशांत हो गया, भगवान को भी दोषी देगा, नाटक को भी दोष देगा, सब प्रकार के उल्टे सीधे संकल्प विकल्प चलने लगे। अगर सचमुच तपस्वी जीवन बनानी है, योगी जीवन बनानी है, इस नाटक के हर दृश्य को बहुत साक्षी दृष्टा बन करके देखो, कुछ न कुछ उसके पीछे राज है, कुछ न कुछ उसके पीछे कल्याण समाया हुआ है। आज भले वो कल्याण का पर्दा छिपा हुआ है, पता नहीं चल रहा है इसमें क्या कल्याण है, लेकिन अधिकतर आप किसी के भी हलचल वाले पार्ट को देख करके थोड़े समय धैर्यता से उसको देखो, उसके पीछे बहुत कुछ रहस्य है, बहुत कुछ भला समाया हुआ है। इसलिए अगर कोई आत्मा तपस्वी जीवन जीना चाहती है तो इस नाटक के हर एक्टर के पार्ट को साक्षी दृष्टा होकर के देखने का अभ्यास करे, और साथ साथ केवल दूसरों के पार्ट को नहीं, अपने अंदर के संस्कारों को, अपने संकल्पों को, अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को, इस अकाल तख्त पर बैठ करके मैं आत्मा हूं देखो साक्षी होकर के, कैसे संकल्प मेरे चल रहे हैं, मैं बाबा का बच्चा बना हूं, भगवान हमारा टीचर है, हम कहते हैं सबको बड़े नशे से, वो हमको पढ़ाता है, इतनी ऊंची गाइडेंस मिल रही है, इतनी ऊंची पढ़ाई है, इतनी ऊंची पालना है, हम सबको पता है कि दुनिया में ऐसी पालना कहीं संसार में किसी को नहीं मिलती, निस्वार्थ रूप से, बाप रूप से, बच्चे बच्चे कहकर के इतनी ऊंची श्रीमत, इतनी श्रेष्ठ शिक्षाएं हम सबको रोज मिलती हैं, बिना मांगे मिलती हैं। बच्चे ये करो, बच्चे ये करो, बच्चे ये करो। ये सब प्राप्ति होते हुए भी मेरे संकल्पों की क्वालिटी क्या है? क्या कभी साक्षी होकर के अपने चलते हुए संकल्पों को देखा है? क्या क्या चल रहा है इसके अंदर? किसी से ईर्ष्या है, किसी से बदला लेने की भावना है, किसी से कोई वैर है, कोई स्वार्थ है, कोई कामना, किस प्रकार के संकल्प हैं? अगर सचमुच तपस्वी जीवन हमें बनानी है तो अपने संकल्पों की क्वालिटी को बहुत अच्छे से अच्छा बनाना होगा। संकल्पों को मारना नहीं है, संकल्पों को रोकना नहीं है, संकल्पों को दबाना नहीं है, लेकिन संकल्पों को कंट्रोल में रखना है। उसको बहुत अच्छी तरह से चलते हुए संकल्पों की गति पर ध्यान दो। ये जो संकल्प चला, मैं बैठा हूं बाबा की याद में, मैं सुन रहा हूं बाबा की मुरली, और इस समय अभी ये घर का संकल्प आ रहा है, परिवार का संकल्प आ रहा है, खेती बाड़ी का संकल्प आ रहा है, क्यों आ रहा है? वो तो हम करेंगे ना अपने समय पर। क्या हम उस संकल्प को उस समय कंट्रोल नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते हैं तो जरूर कुछ न कुछ कारण होगा। तपस्या के लिए कंट्रोलिंग पावर की बहुत बहुत आवश्यकता है। अगर हमारे मन और बुद्धि पर हमारा कंट्रोल नहीं है, आप एक घंटा लाल लाइट में बैठे रहो, आपका एक मिनट योग नहीं लगेगा। और कईयों का ये अनुभव होता है, भाई जी आए तो एक घंटा बैठे लेकिन मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? संकल्पों पर अपना ध्यान नहीं है। कम से कम नहीं योग लग रहा, कुछ नहीं करो, कहीं नहीं जाओ, आप ऊपर जाओ, ये करो, वो नहीं, ये तो चिंतन करो, बाबा की याद में मैं यहाँ योग में आया हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बाबा ने समझ दी है, मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, इस शरीर तो जड़ है, इसको मैंने धारण किया है, ये वस्त्र है। पहला लेसन रिवाइज तो करो कम से कम, अपने स्वरूप को देखो अपने ही दिव्य नेत्र से, अपने स्वधर्म को याद करो, अपने स्वदेश की तरफ बुद्धि ले जाओ कि मेरा असली घर कहाँ है, यहाँ तो हम पार्ट बजाने आए, कुछ समय यहाँ है फिर इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ से दूसरे पार्ट में चले जाएंगे, लेकिन हमारा असली घर कहाँ है? इस प्रकार का चिंतन दो, और चिंतन करते करते आपका ये मनन मग्न स्थिति की ओर ले जाएगा। कोई मनन ही नहीं करे, शांत होकर के बैठ जाए और यही सोचे, हमको तो यही सिखाया बहनों ने कि तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप हो, शांति के सागर के बच्चे हो, कितनी देर आप ये सोचोगे? दो मिनट, तीन मिनट, पांच मिनट सोच करके फिर सो जाओगे या बुद्धि भटक जाएगी, कहेंगे मजा ही नहीं आता, इधर के संकल्प आए, इधर के संकल्प आए, लड़ाई झड़ाई, अंदर अंदर युद्ध चल रही है। बाहर तो ऐसे बैठे हैं शांत, और अंदर अंदर लड़ रहे हैं, इधर के उधर के संकल्प आ रहे हैं, योग क्या लगेगा? इसलिए उन संकल्पों पर ध्यान दो और अपने आसन पर बैठो, ब्रकुटी की कुटिया में ऐसे बैठ जाओ, ये कुटिया है, बहुत अच्छी कुटिया है, चले जाओ अपने ज्योति स्वरूप को बहुत ध्यान से देखो, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, मैं प्यार के सागर का बच्चा, प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। कोई भी योग की अच्छी अनुभूति के लिए रोज वैरायटी करना, एक जैसा नहीं, वैरायटी जहाँ है, नवीनता है, रोज नया नया ढंग से करो। कभी साकार में बैठे तो साकारी स्मृतियों में खो जाओ, बाबा संगम युग पर मुझे क्या बना दिया, कहाँ मैं पड़ा था किचड़े में, क्या खाता था, कैसे रहता था, आपने मुझे तो कितना स्वच्छ, कितना पवित्र, इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन दिया। भाग्य का चिंतन करो, संगम युग का भाग्य, कलयुग का, मनुष्यों का जीवन और हमारा जीवन, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका जीवन, उनका व्यवहार, और बाबा ने हमें अपना बच्चा बना करके इतना पवित्र, इतना स्वच्छ, इतना निर्मल, इतना निर्दोष, इतना अव्यभिचारी बना दिया, भटकना बंद करा दिया। कहां कहां भटक रहे हैं लोग, और हम सब झंझटों से, सब भटकने से बच गए। साकारी याद, बहुत प्यार में खो जाओ। मैं कई बार सुनाता हूँ, एक भाई से मैं अचानक मिला एक दिन, कहता है भाई जी मैं अपना अनुभव सुनाऊं, ने कहा हाँ जरूर सुनाओ। सुनाता है, कहता है भाई जी ऐसे देख करके मैं बोल रहा, मैं तो रावण का बाप था। तो मैं और देखने लगा, हमने कहा तुम रावण का बाप क्या बोलते हो भाई। कहता भाई जी जितने रावण के अवगुण है ना उससे कई गुना ज्यादा मेरे में थे। मैं इतनी शराब पीता था ना जो मैं नाले में पड़ा रहता था, कुत्ते मेरा मुंह चाटते थे, और इतना गुस्सा करता था जो मैं जब गली में निकलता था सारे बच्चे सारे परिवार अपने दरवाजे बंद करके भागते थे, वो आ रहा है भाई। इतना मेरे से डरते थे। मेरा सोने चांदी का बिजनेस सारा चौपट कर दिया मैंने, और कोई ऐसा पाप नहीं है जो मैंने खुद न किया हो कर्मेंद्रियों से, सब कुछ कर लिया दुनिया में। और सचमुच जिस दिन बाबा मिला, ऐसे कहा और रोने लगा बोलते बोलते। तो क्या बोला, क्या हुआ? कहता भगवान ने मेरी क्या जीवन बनाई, आज मुझे लोग समझते हैं, कहते ब्रह्मा कुमारियों ने क्या कमाल की है, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने बदल दिया जो इतना शराबी इतना पापी इतना गंदे कर्म करने वाला, आज उसका इतना अच्छा बिजनेस है इतना अच्छा सम्मान है। कहता है मैं बदला हूं तो मेरा सारा परिवार ज्ञान में आ गया मुझे देख करके। आप सब सोचो योग क्या है? सिर्फ योग परमधाम की याद में बैठ जाना योग है क्या? अरे प्यार में खो जाओ। क्या बाबा कहता है प्यार में तुम्हारे आंसू आ जाएं। बाबा आपने मुझे क्या बनाया, क्या मैं कर रहा था, कैसा था, और क्या बाबा आपने बना दिया, नरक से निकाल लिया, किचड़े से निकाल लिया। ये साकारी याद तो इतनी अच्छी है जो आप घंटों बैठ करके चिंतन कर सकते हो। इसको हम कहते हैं रूह रिहान करो, भगवान से अपने रूह से रूह की बात करो, योग लग जाएगा। योग यही है, प्यार में खो जाओ। ठीक है, ये चलो थोड़ी देर ये बात किया, फिर बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया, इतना स्पष्ट ज्ञान दिया, कहीं किसी को मुझाया नहीं है। आत्मा का ज्ञान, घर का ज्ञान, परमात्मा अपना स्वयं परिचय दे रहा है, नाटक का ज्ञान, उसमें सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, कितना स्पष्ट विस्तार है इसका, विचार करके तो देखो। मिलाओ शास्त्रों में जो आज तक मैंने पढ़ा था, कितना भटके हुए थे, पता ही नहीं कौन है ये आत्मा, कौन है परमात्मा, कभी कहेंगे आत्मा सो परमात्मा है, कहीं कहेंगे निर्लेप है, कभी कुछ क्या क्या कहते थे। बाबा ने कहीं भी अंधेरे में नहीं रखा, इतना स्पष्ट ज्ञान दिया ज्ञान सागर ने। चिंतन करो, मजा आ जाएगा आपको, क्या ज्ञान है, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान मिला है। तो ज्ञान की लहरों में लहराना, रूह रिहान करना, फिर बाबा को अपने सब बोझ दे करके लाइट हो जाना, फरिश्ता ड्रेस पहन लेना, फिर निराकार स्थिति में बिंदु बन करके बात करना। योग को वैरायटी करेंगे तो ये जीवन तपस्वी जीवन है, एक दो घंटे योगी नहीं है। एक घंटा योग किया, बाकी बाबा कहता 21 घंटा क्या किया, 23 घंटा क्या किया, विचार करो। जीवन योगी है, और इस योगी जीवन को अगर वैरायटी करोगे तो स्वतः योगी बन जाओ। और जो त्याग तपस्या पर ध्यान दे रहे हैं उनकी चलन, उनका चेहरा, उनका व्यवहार सेवा अपने आप करता है। सेवा के लिए भटकने की अब जरूरत नहीं, वो समय था जो साकार मुरलियां हम अभी रिवाइज कर रहे हैं उसमें था 50 साल पहले। बच्चे जाओ शमशान में जाओ, इधर जाओ प्लेन से पर्चे गिराओ, ये करो वो करो, बहुत कुछ कर लिया हम लोगों ने, सब कुछ किया जो बाबा ने कहा। अभी इसके पीछे ज्यादा धक्के नहीं खाना है, बाबा अपने आप करा रहा है। जो देवता घराने की आत्माएं हैं सब निकल करके आ रही हैं। सेवा के पीछे स्थिति नहीं बिगाड़ना, ये मेरी एरिया है, तेरा सेंटर है, तेरा सेंटर है, जाए देश का हो ले जाओ तुम, जाओ मुझे नहीं चाहिए। बहुत अच्छी स्थिति बनाओ। सेवा का अर्थ है सुख देना और सुख लेना। अगर सेवा से स्थिति डगमग हो गई तो सेवा को बाबा सेवा मानते ही नहीं, उसके रिजल्ट में नहीं है। सेवा का अर्थ है बिगड़ी को बनाना, सेवा का अर्थ है हर आत्मा को सही पैगाम दे करके उसको दुखों से मुक्त कर देना। खुद जाकर के दुखी हो गए, डिस्टर्ब हो गए, तेरे मेरे के चक्कर में आ गए, नाम बदनाम कर रहे हैं, क्या सेवा है? मैं तो इसको सेवा, दादी कहती इसको सेवा कहो ही नहीं। आप सब ध्यान देना, बाबा के बच्चे खूब सेवा करो, सेवा की फील्ड मिलती है करो, लेकिन कभी हदों में लटकना नहीं, अटकना नहीं। बाबा करण करावनार करा रहा है, और नहीं सेवा कोई है स्थूल में, ज्ञान सुनाने की नहीं है, मनसा से शक्तियों का दान दो। तीन प्रकार के चांस हैं, हर एक के पास हैं, मनसा शुद्ध है, पवित्र है, शक्तियां जा रही हैं, मनसा सेवा करो, सबके प्रति शुभ भावना, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े। वाचा जिसके संबंध संपर्क में आओ, थोड़ा सा ज्ञान जरूर सुना दो, मैं कौन हूं, बाबा कौन है, कैसे सृष्टि पर आया है, वाचा से ज्ञान दान करो। और कर्म ऐसे करो जो गुणों का दान हो। इस सेवा के तीन साधन हैं, और तीन और हैं। अगर आपके पास तन की शक्ति है, बाबा की सेवा में लगाओ, सोचो नहीं, बहुत करने वाले, अगर मैंने नहीं किया तो क्या हुआ। सचमुच अगर कोई कोई तन को पावन बनाना है तो बाबा के यज्ञ में तन से कर्मणा सेवा करनी चाहिए, जो मिले। हम लोगों ने तो कभी नहीं सोचा ये झाड़ू लगाना, मैंने 11 साल तक बाबा के साल में और दीदी के कमरे में झाड़ू लगाई है, धोबी घाट किया है, सबके कमरों में पानी एक जगह गर्म करके पहुंचाते थे, सेवाएं थी और बड़े प्यार से खेलते हंसते बहलते ग्रुप में करते थे। कभी भी ये नहीं कहना ये सेवा मेरी नहीं है। अगर बाबा के घर में झाड़ू लगाने को मिला, बर्तन मांजने को मिला, कोई भी प्रकार की आपको दरी बिछाने की सेवा मिल गई, भाग्य है हमारा, भगवान के कार्य में हमारा कुछ सहयोग लग जाए। तन और धन, उसके बीच में मन। अगर तन से नहीं कर सकते हो तो धन से करो, जो है जितना है बाबा के कार्य में गुप्त रीति से सफल हो। लेकिन तन और धन उन्हीं का लगता है जिनका मन पहले लगता है। तो अगर सेवा सच्ची करनी है तो तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा करके बाबा से सेवा का भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो हम सब त्याग तपस्या और सेवा, इन तीनों विधियों को अपना करके इसमें बहुत अच्छी रेस करके लास्ट आते भी फास्ट जा सकते हैं। तो आप सभी ध्यान देना, ये हमारे यज्ञ का फाउंडेशन रहा है, हमारी दादियों ने करके सिखाया है, पहले बाबा ने किया, बाबा को फॉलो दादियों ने किया, और आज भी कई लोग गुप्त रीति से उसी पर चल रहे हैं कदम पर कदम। हम सभी भी अगर ये तीनों बातें ध्यान पर रखेंगे तो लास्ट आते हुए भी फास्ट चले जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। अभी हम सब आधा घंटे के लिए योग करेंगे, पहले फिर है तो एक घंटे का टाइम, लेकिन मैं आपके साथ आधा घंटे हूं। सभी ठीक है ना, फ्रेश है कि खड़े होना है, ठीक है ना सब? बिल्कुल सुस्ती नहीं करना, कोई गर्दन ऐसे नहीं करना, बहुत अलर्ट होकर के तपस्वी मूरत बन करके। तपस्वी आत्माएं बहुत एकाग्र चित्त होती हैं। चार चीजों की एकाग्रता तपस्या में चाहिए। इसलिए जब मैं कहीं योग करता या कराता हूं ना, मैं कहता हूं भाई अगर उठना है तो पहले उठ जाओ, बीच में नहीं उठना। अभी तो आधा घंटे ही समय है, अगर उठना है 5 मिनट जाना है बहुत जरूरी है तो जाओ, नहीं तो चुपचाप बैठो। सबसे जरूरी है तन भी एकाग्र चाहिए, स्थिर चाहिए तन। ये शरीर ये भी हिलेगा डुलेगा, इधर उधर देखोगे मजा नहीं आएगा। तो एकाग्रता तन की है, फिर अपने विचारों की है, मन की, बुद्धि के भटकने में भी उसमें भी एकाग्रता है, और भावनाओं की एकाग्रता है, दिल की एकाग्रता। तन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता और दिल अर्थात भावनाओं की एकाग्रता। भावनाएं भी एक से जुड़ी हुई हैं, एक के सिवाय भटक नहीं रही, ये बहुत अच्छा वो बहुत अच्छा, सब अच्छे हैं लेकिन सबसे अच्छा मेरा बाबा है। तो इसलिए एकाग्रचित होकर के अपने भ्रकुटी आसन पर बैठना है और अपने चमकते हुए हीरे को देखो। संकल्प करो, मैं एक लाइट माइट का एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा हूं, इस शरीर से भिन्न हूं, अलग हूं। अगर देह और देही का अलग अनुभव कर लिया, 5 मिनट भी कर लिया, आप तपस्या के लहरों में लहराने लगेंगे। अलग अनुभूति होना ही यथार्थ योग है। तो जब हम अपने स्वस्थ स्वरूप को देखते हैं, आत्मा कहीं निकल के शरीर से नहीं जाती, निकल जाएगी तो शरीर मिट्टी हो जाएगा, जाड़ हो जाएगा, है शरीर में ही। लेकिन इसकी जो दो शक्तियां हैं मन और बुद्धि, वो अपनी ट्रेवल यात्रा करती है और वो यात्रा जिधर मैं चाहूं, मैं आत्मा मालिक हूं, इसको जिधर ले जाना चाहूं उधर ले जाऊं। तो हम अभी यहां बैठ करके मन और बुद्धि को बहुत साक्षी दृष्टा स्थिति से देखेंगे, कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, और अगर इधर उधर जा रहे हैं तो उनको मोड़ेंगे, चल अभी मुझे सूक्ष्म वतन में बाबा के समीप चलना है। कितना समय से बाबा अव्यक्त वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनका लाइट का एक चमकता हुआ स्वरूप देखो दिव्य नेत्र से, इन स्थूल नेत्रों की बात नहीं है, बुद्धि से अनुभव करो। मैं एक दृश्य कल ही अचानक इमर्ज किया, सोमवार का दिन था, एक घंटा योग मेरा चलता है अलग से, बहुत अच्छा बाबा ने एक बोलनी चलाई है कि आत्मा अगर इस अकाल तख्त पर बैठी है तो तीन प्रकार की लाइट का साक्षात्कार होना चाहिए। आप सब उसको इमर्ज करना अपने सामने, तीन प्रकार की लाइट। तो उसमें बाबा ने कहा है कि ये जो दोनों नयन है ना, उनमें एक जैसे लाइट का गोला जल रहा है, एकदम चमक है, और भ्रकुटी के बीच में एक बल्ब की तरह आत्मा चमक रही है, और उसके जो पवित्र विचार है उससे एक बहुत सुंदर लाइट का छत्र है, ताज है, एक बहुत सुंदर चित्र, जो ब्रह्मा बाबा उसी के अंदर रहता है और कोई शरीर पूरा दिखाई नहीं देता है, व्यक्त वतन में संदेशियों को भी नहीं दिखाई देता, दिखता जरूर बाबा है लेकिन यही सिर्फ तीन चीजें दिखाई देती है, चमकता हुआ नयनों का एकदम जैसे लाइट के नयन है, मस्तक के बीच में व्रकुटी में दोनों आत्माएं परमात्मा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा चमक रही है, और उसके चारों ओर बहुत सुंदर प्रकाश का आभा मंडल है, प्रभा मंडल है। तो हम सब वतन में बाबा के इस दृश्य को इमर्ज करेंगे और हम भी उसी समान स्थिति में बैठेंगे कि मैं एक लाइट माइट स्वरूप चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और मेरे दोनों नयनों से एक बहुत चमकती हुई लाइट निकलकर बाबा को देख रही है, बाबा की शक्तियां ले रही है, और चारों ओर एक बहुत सुंदर प्रकाश का शरीर है जिस शरीर में बाबा की शक्तियां आ रही हैं। तो बाबा की शक्तियों का अनुभव करो और एकदम वतन की सैर करो, लगेगा कि मैं लाइट के वतन में, सूक्ष्म वतन में पहुंचकर बाबा की सर्व शक्तियों के नीचे हूं, उनका वरदानी हस्त मेरे सिर पर है, उनके नयनों की लाइट मुझे शक्ति प्रदान कर रही है, इसका अनुभव करो। और फिर 15 मिनट के बाद दूसरी स्टेज बताएंगे। तो अभी हम 15 मिनट के लिए एक ही स्थिति में, स्थिति ही आसन है, और इस स्थिति के आसन पर बैठ करके मन और बुद्धि से अपने उस अव्यक्त वतन की सैर करो। लाइट का चमकता हुआ शरीर है और वो लाइट का वतन है। स्वरूप में स्थित होकर तपस्वी मूरत बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई मैं तपस्वी आत्मा बीज के साथ संपूर्ण कनेक्शन है, पूर्वज बनकर इस वृक्ष में पूरी वंशावली को शक्तियों की सकास दो। मैं बीज रूप आत्मा सारे मनुष्य सृष्टि की आत्माओं की पूर्वज आत्मा हूं, जैसे मेरा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, मैं भी उसके समान सर्वात्माओं की पूर्वज आत्मा हूं। मैं सर्व शक्तियों से समर्थ आत्मा हूं। मैं अपने मास्टर दाता स्वरूप से सर्वात्माओं को शांति और शक्ति की सकाश दे रहा हूं। ज्ञान सूर्य बाबा की सब किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं और मुझ आत्मा द्वारा सारी वृक्ष को लाइट जा रही है।